अध्याय 3। नागर नैया जाला काले पनैया रे हरि। तलवारिया दाताराम नागर को जब 20 वर्ष काले पानी निवास की सजा सुनाई गई, तब वारंट के नागपा से मुख उनके संगी साथी और चेले चपाटे रो पड़े। उन बहादुरों का पत्थर जैसा कलेजा भी हिल गया और हिचकियां बंध गईं। हथकड़ी और डंडा बेड़ी से कसा हुआ नागर का छरहरा बदन लौह बंधन की परवाह न कर लाठी की तरह सीधा तन गया। उसकी आँखों के डोरों की ललाइयां और भी तन गईं। उसके पतले होठों पर घृणा भरी मुस्कान फैल गई और उसने न्यायाधीश की ओर आंखें तरेर कर देखा। जज से आंखें चार हुई और नागर की आंखों की ज्वाला सह न सकने के कारण उसने आंखें नीचे कर ली और होठों में ही बुदबुदाया, बहादुर आदमी है। पर नागर ने उसकी बात न सुनी। उसकी निगाह अपने मित्रों और चेलों की ओर घूम गई। उसने उन पर क्रोधपूर्ण दृष्टि डाली और गरज कर कहा, ना मर्दों की तरह रोते क्यों हूँ? 20 बरस ब्रह्मा के दिन नहीं है, चुटकियों में उड़ जाएंगे। जाओ बाबा जी से कह देना, अब हमारे घर द्वार का भार उन्हीं पर है और मिर्जापुर वाले बाबा जी से कहना कि सुंदर की खोज खबर लेते रहेंगे। जाओ। उस्ताद का आदेश पाक भारी मन और भीगे नयन लिए नागर के चेले अदालत के कमरे से बाहर निकले। नागर एक बार पैर के पंजों पर खड़ा हो गया। सारी नसें कड़कड़ा कर बोल उठी। उसने अपना शरीर जरा दाहिने बाएं हिलाया और उसके भुज डंडों पर मछलियां तैर गईं। बेड़ी छनछनाई और वह बंधे हुए शेर की तरह झूमता बरकंदाजों में आगे आगे चल पड़ा। खंड 2। सन 1772 की काशी अपने गुंडों के लिए प्रसिद्ध थी। वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा काशी राज्य की लूट के बाद जब विदेशी शासन ने वीरों को अपनी तलवारें कोष में ही रखने के लिए विवश किया, तब उनके लिए सिंह वृत्ति ग्रहण करने के अतिरिक्त और मार्ग न रहा। राजा चेत सिंह की दुर्दशा देखकर जिस समय काशी अचेत होने लगी, तब उसके नालायक बेटे जो गुंडे कहलाते थे सचेत हुए और उन्होंने विदेशी मलिच्छ के प्रति घृणा का व्रत लिया। ऐसे में दाताराम नागर और भंगड़ भिच्चू प्रमुख थे। अलईपुर में जहां आज छुतहा अस्पताल है, उसी के समीप एतरनी बैतरनी तीर्थ के बगीचे में भंगड़ भिच्चू का कुआं था। बाग तो अब नहीं रह गया है, पर कुआं अब भी मौजूद है। वहीं नागर का अखाड़ा भी था। वहां उन्हीं जैसे लोग एकत्र होते और उनके सहायकों की क्षति पहुंचाने की योजनाएं बनाई जाती। बनारस में शंभू राम पंडित, बेनी राम पंडित, मौलवी अल्लाउद्दीन कुबरा और मुंशी फयाज अली तथा मिर्जा में अंग्रेजों की ओर ठेकेदार बनकट मिश्र अंग्रेजों के प्रमुख सहायक थे। कुबरा तो राजा चेत सिंह के पलायन के समय ही बाबू ननको सिंह नजीब द्वारा मारा जा चुका था। बेनी राम और शंभू राम गुंडों के भयवश घर के बाहर बहुत कम निकलते थे, परंतु मुंशी फैयाज अली बनारस के नायाब और बनकट मिश्र मिर्जापुर में रहने के कारण अपने को खतरों से बाहर समझते थे। नागर के मित्रों की राय हुई कि पहले मिश्र से ही निपट लिया जाए। नागर ने अपने भाई श्यामू और बिठल को मिश्र के पास भेजकर कहलाया कि अगली पूर्णिमा को ओझला के नाले पर आपको भांग छानने का न्योता है। मिश्र ने निमंत्रण स्वीकार कर कहला भेजा कि भोजन पानी का प्रबंध मेरी ओर से होगा। खंड 3। जेल के काल कोठरी में पड़ा पड़ा नागर अपने जीवन का हिसाब किताब जोड़ रहा था। उसे विश्वास था कि झांसी वाले हिम्मत बहादुर राजा अनुपगिरी गोसाई के पुत्र उमराव गिरी के काशी में रहते उसके परिवार को कोई कष्ट न होने पाएगा और मिर्जापुर में गोसाई जयराम गिरी सुंदर को खाने पहनने का कष्ट न होने देंगे। सुंदर का स्मरण होते ही उसे उजला के नाले वाली घटना भी याद हो आई। मिसिर अकोड़ी विरोही के 100 लठेतों को लेकर आया था। नागर भी अपने भाइयों मित्रों और शिष्यों के पलटन के साथ वहां पहले से ही पहुंच चुका था। एक ओर 2500 सिलबट्टे खटक रहे थे, दूसरी ओर कढ़ाइयों में पुड़ियां छन रही थी। भाग बूटी छानने और खाना पीना हो जाने के बाद चांदनी रात में दोनों दलों में जमकर भिड़ंत हुई। बीच बीच में मिश्र चिल्ला उठता था, भगवती विंध्यवासिनी की जय। साथ ही नागर की ललकार उसकी ध्वनि से जा टकराती, जय भगवान हाटकेश्वर की। दोनों ही अपने अपने गिरोह के बाहर आकर एक दूसरे से भिड़ने का हौसला रखते थे। अंत में दोनों एक दूसरे के सामने आ भी पड़े। नागर ने खांडा चलाया, मिसिर ने अपनी लाठी पर वार झेला। खांडे के पानी में लाठी तिनके सी बह गई। मिसिर पीछे हटा पर नागर रपेटता गया। तब मिसिर घूमा और भाग चला, नागर ने उसका पीछा किया। चांदनी रात होने के कारण मिसिर नागर की दृष्टि से ओझल न हो पाता था। सहसा दाताराम ने सोचा, भागते शत्रु का पीछा करना अधर्म है, वह ठुमक गया। श्रृंखलाबद्ध नागर की बेड़ियां खनखनाई और अपने जीवन का यह गौरवपूर्ण अध्याय पढ़ते पढ़ते उसकी छाती गर्वस्फित हो उठी। काल कोठरी के मच्छर उसका खून पीते पीते तृप्त हो चुके थे, इसलिए उनका सामूहिक आक्रमण बंद हो गया था। फलतः बंदी नागर की आंखें लग गईं। परंतु जागृतावस्था के विचार निद्रा में भी स्वप्न बनकर उसके मस्तिष्क में मंडराते रहे। उसने सपना देखा, वह मिश्र का पीछा छोड़कर लौट रहा है। आधी रात का समय है, चांदनी 16 कला से खिली हुई है। नाले के उस पार बबुल पर बैठा हुआ थुदकू रह रह कर चिल्ला उठता है। शिकार की आशा में एक ही पैर पर शरीर का भार देकर खड़े बगुले के सफेद परों पर ज्योत्ना बिखरी पड़ रही है। स्निग्ध आलोक में पैरों के नीचे पीली मिट्टी उष्ण निश्वास के साथ ही कठोरता छोड़कर शीतल और कोमल हो गई है। नागर ने अनुभव किया कि नीरव रात्रि की निस्तब्धता, तीव्र ज्योत्ना, दूर प्रसुप्त वनस्थली और चतुर्दिक फैली पीली मिट्टी ने सारे वातावरण को जैसे पाशुमुख रुग्ण शिशु के समान करुण बना दिया है। साथ ही उसने यह भी देखा कि सामने टीले से सटकर सफेद गठरी सी कोई वस्तु पड़ी है। उसने निगाह जमा कर देखा, मालूम हुआ कि वह कोई अवगुंठनावृत नारी मूर्ति है। नागर के शरीर के रोए भरभरा उठे, शरीर कांप गया और वच स्थल के नीचे हथपिंडे ने एक बार अत्यंत दुर्गति से चलकर स्नायु मंडल को छिन्न भिन्न सा कर दिया। उसकी शून्य दृष्टि घूमती हुई अपने हाथ के खाड़े पर पड़ी, खाड़े की चमक आंख में उतर आई। उसे स्मरण हो आया कि लोहे के सामने प्रेत नहीं ठहरते। उसने खड़ा संभाला और आगे बढ़ा। उसे पास आते देख नारी मूर्ति उठ खड़ी हुई और उसने लज्जा संकोच भय और दुविधा भरी दृष्टि नागर पर डाली। नागर ने भी उसे भरी आंख देखा और आंखों से ही उसका परिचय पूछा। नागर की पौरुष भरी मूर्ति देखकर वह कुछ अस्वस्थ सी हुई। नागर की नोकदार छीनी काली ऊपर की ओर मरुड़ी हुई मूछें, कमर में एक ओर बिछुआ और दूसरी ओर खोसी कटार, लंबा छरहरा कमाया हुआ शरीर, पट्टेदार घुंघराले बाल और थोड़ी परी रत्नकार आंखें देख उसका संकोच जाता रहा। अत्यंत प्रगल्भा की तरह उसने हंसकर नागर का हाथ थाम लिया। नागर के शरीर में बिजली दौड़ गई। रक्त स्त्रोत के आलोड़न से उसके शरीर की मांसपेशियां सनसना उठी। उसने उसी स्नेहार्द प्रलुब्ध दृष्टि से देखा, उसके भी हाथ उठे। उसने ज्योत्ना स्नात सुराणपूर्ण पात्र के समान मदिर उस रमणी स्त्री के कमनी कलेवर को अपनी ओर खींचा। रमणी खींचने का उपक्रम कर रही थी कि नागर चौका और उसका हाथ छोड़ते हुए उसने हल्के झटके से अपना हाथ भी छुड़ा लिया। नारी गिरते गिरते बची। नागर को सहसा अपने पिता के वचन स्मरण हो आए थे, जो उसे वीर व्रत में दीक्षित करते समय उसके पिता ने कहे थे। बेटा, इस व्रत का धारण करने वाला पर स्त्री को माता समझता है। और उसके पिता वह व्यक्ति थे जिन्होंने नागर ब्राह्मणों के कुल देवता भगवान हटकेश्वर की स्थापना काशी जी में की थी। उसने तड़प कर पूछा, तुम कौन हो? ऐसे ही पूछा जाता है, नारी ने उल्टे प्रश्न किया। नागर दो कदम पीछे हटा। नारी के समक्ष कभी परुष न होने वाला उसका हृदय स्वस्थ होते ही पुनः स्निग्ध हो गया था। उसने हताश से स्वर में कहा, अच्छा भाई, तुम कौन हो? नारी हंसी। उसने उत्तर दिया, पहले एक प्रतिष्ठित ठाकुर की कुंवारी कन्या थी, अब किसी और की रखेल कम्बिन हूँ। ऐसा कैसे हुआ? नागर ने पूछा। वैसे ही जैसे यहाँ आते जाते तो तुम मर थे, पर यहाँ आते ही देवता बन गए। तुम्हें कस्बिन किसने बनाया? सब मिसिर महाराज की कृपा है। साल भर हुआ मैं अपनी बारी में आम बीन रही थी, जहाँ से मिसिर ने मुझे उठवा मंगाया और कस्बिन से भी बदतर बनाकर रख छोड़ा है। इस वक्त यहाँ कैसे आई हूँ? सुना था आज मिसिर से किसी की बदी है, देखने आई थी कि मिसिर का गला कटे और मेरी छाती ठंडी हो। अब क्या क्या कहूँ, भागती बखत मिसिर ने मुझे यहाँ देख लिया। अब बड़ी दुर्दशा से मेरी जान जाएगी, तुम्हारी शरण हूँ, रक्षा करो। नागर ने दो मिनट कुछ सोचा, फिर बोला, तुम नारघट चली जाओ, वहीं घाट पर मैं तुमसे मिलूंगा। रमणी फिर हंसी, नागर मुस्कुरा उठा। कठोर भूमि पर पड़े कैदी ने करवड़ बदली, उसके जेल यातना पीड़ित मुख पर मधुर मुस्कान दौड़ गई। सपने करवट ली। नागर ने देखा रमणी को विदा करके वह पुनः चलने लगा। सामने रास्ता एक घाटी में होकर जाता था, जो इतना सकरा था कि उसमें एक समय एक ही व्यक्ति के चलने का अवकाश था। नागर ने देखा मिसिर भी लौट रहा है और घाटी में आगे आगे जा रहा है। नागर की आहट पाकर भी वह पीछे न घूमा, बढ़ता ही चला गया। ठहरो मिसिर जी, नागर ने आवाज दी। चले आओ नागर, बिना घूमे ही मिसिर ने जवाब दिया। नागर ने उसके साहस पर विस्मित होकर फिर कहा, मिसिर जी तुम खाली हाथ हो, मैं हथियार बंद हूँ, कहीं पीछे से हमला कर दूं तब। मिसिर ठठहाकर हंस पड़ा, फिर बोला, मालूम है तुम गुंडे हो, ऐसा छोटा काम कभी नहीं कर सकते। नागर सरल आनंद से आप्लावित हो उठा, फिर पूछा, तब मैदान से भागे क्यों थे? तुम मेरी लाठी टूटी देखकर भी जोश में आगे बढ़े आ रहे थे, तुम भूल गए थे कि निरस्त्र शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। लेकिन मिसिर जी तुमने काम बहुत खराब किया है, एक तो अपना देश फिरंगियों के हाथ बेच दिया, उस पर एक कुंवारी कन्या की इज्जत भी उतार ली, तुम्हें हमसे लड़ना ही होगा। मैं तो अब भी खाली हाथ हूँ भाई, इससे क्या मैं भी खांडा रखे देता हूँ, मेरे पास बिछुआ कटार भी है, इनमें से एक तुम ले लो, बस यही निपट जाए। सपने में युद्ध और घात प्रतिघात के साथ ही उसके मुख पर भी विभिन्न रेखाएं बन और बिगड़ रही थी। उसने वैसे ही दीर्घ सांस ली जैसे मिसिर के कलेजे में कटार उतार देने के बाद उसने घटना स्थल पर ली थी। उसकी आंख खुल गई, सपने ने उसे चिंतित कर दिया था। समाज से बहिष्कृत सुंदर को उसने निस्वार्थ भाव से आश्रय दिया था। नार घाट पर किराए के एक मकान में उसे टिकाकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए वह उसे मिर्जापुर की पेशेवर गाने वालियों से गाने बजाने की शिक्षा दिलाने लगा। जब कभी वह मिर्जापुर जाता तब उसकी सारी व्यवस्था देख सुन दिन रहते ही उसके यहाँ से चला आता, रात उसके घर पर कभी न ठहरता। उसे वह सुंदर पुकारता था, वह उसे सुंदर लगती थी। खंड 4। श्रावण कृष्णा सप्तमी का चंद्रमा आकाश में उदित हो रहा था। बंदी ने ठंडी सांसें खींची, पेड़ी के चुभने से उसे कहीं पीड़ा हुई। उसने अपनी स्थिति अनुभव की और फिर वह स्थिति लाने वाली परिस्थिति पर विचार करने लगा। मिर्जापुर में ही उसे खबर मिली, बनारस के नायब फयाज अली इस बार फिर मुहर्रमी जुलूस के दुलदुल घोड़े की ठठेरी बाजार की ओर से निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी का राज होने के बाद गत 2 वर्ष से फयाज अली मुहर्रम के जुलूस के लिए नया रास्ता निकाल रहे थे। 2 बार तो नागर ने उधर से जुलूस न जाने दिया था। इस बार उसने सुना कि फयाज अली जुलूस के साथ पलटन भी भेजेंगे। नागर का रक्त उबल पड़ा। वह मिर्जापुर से सीधे बनारस आया और सुड़िया होते ठठेरी बाजार में उस समय पहुंचा जब दुलदुल घोड़ा उसके ठीक सामने से ही जा रहा था। उसने तड़प कर खांडे से घोड़े पर वार किया, घोड़ा 2 टुक होकर ढेर हो रहा। पलटन भी नागर पर टूट पड़ी। गौरों की संगीनों और तिलंगों की तलवारों से नागर की खांडे की लड़ाई थी। संगीने झुक गई और खांडा रास्ता चीरता हुआ बढ़ता चला गया। नागर ने ब्रह्मनाल जाकर उमराव गिरी की बावली के एक नाले में अपने को छिपाया, पर वहां अपने को सुरक्षित ना समझकर वह एक रात राजघाट की खोह में घुसा। एक दिन कटेसर निपटते जाते समय मुखबिरों से खबर पाकर गोरों और तिलंगों की सेना ने उसे फिर जा घेरा। खाली हाथ केवल लोटे से 2-4 सैनिकों की खोपड़ी तोड़ने के बाद नागर गिरफ्तार हो गया। नागर को जीवन भर का हिसाब किताब जोड़ने के बाद अनुभव हुआ कि मेरा जीवन सार्थक है। उसने संतोष की सांस ली। खंड 5। नागर को सजा सुनाई जाने के 2 दिन बाद जिस रात श्रावण कृष्ण नवमी का चंद्रमा उदित हुआ उस समय आकाश मेघाच्छन्न था। अस्पष्ट फीके आलोक में व्यक्ति और वस्तु की सीमा रेखा तो समझ में आ जाती थी पर वह स्पष्ट दिखाई न देती थी। हल्के फुल्के मेघों के दल इधर उधर उड़ते फिर रहे थे। आकाश के एक कोने में एक चमकदार तारा झिलमिला रहा था। इसी समय गोसाई जयराम गिरी भंगड़ भिक्षुक और नागर का एक चेला बिरजू चिल्ह गांव में इक्के पर से उतर नार घाट जाने के लिए नाव में सवार हुए। उन्हें यह खबर न थी कि सुंदर को नागर के काले पानी जाने की खबर मिल चुकी है। उन्हें यह भी न मालूम था कि सुंदर इस समय भी उस पार नार घाट की सीढ़ियों पर बैठी बूढ़ी गंगा के पानी में पैर झुलाए आकाश की ओर एक टक देख रही है। वह सोच रही है कि सिर पर यह जो नीला आकाश है आखिर वह है क्या, उसके पार भी क्या इसी प्रकार सुख दुख और हास्य रुदन से भरा हुआ पृथ्वी के ही समान कोई स्थान है जो इस प्रकार फल फूलों और लताओं से रंगीन हो रहा है। वहाँ भी क्या ऐसे ही नर नारी हैं? वहाँ भी क्या ऐसे ही तृप्तिहीन आश्रयहीन गृह हैं? ऐसे ही लांछना है, ऐसे ही अविचार हैं? नागर से उसका कितना अल्प परिचय था, फिर भी उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह उसका जन्म जन्मांतर का परिचित हो। वही नागर काले पानी गया। सुंदर सोचने लगी, काला पानी कहाँ है? दूर, बहुत दूर कोई टापू है जहाँ से लौटकर कोई नहीं आता। सुंदर का हृदय भर आया, उसके होठ खिले, वह गुनगुनाने लगी। अरे रामा नागर नया जाला, काली पानिया अरे हरी, सबका नया जाला, काशी हो विशेषर रामा, नागर नया जाला, काली पानिया रे हरी। उसका स्वर क्रमशः ऊंचा हुआ, निस्तंभता की छाती चीर उसकी करोड़ों ध्वनि आकाश में गूंजी। सुने पासार तट चंचल तरंगे और नौका पर सवार नागर के साथी सुनने लगे। घरवा में रोवे नागर माई ओ बहनिया रामा, सिरजा पे रोवे बारी धनिया रे हरी, खुटिया पे रोवे नागर डाल तरवार या रामा, कुनका में रोवे कड़बिनिया रे हरी। नाव और समीप आ चली थी, तीनों नौकारोहियों ने सुना। रहिया में रोवे तोर संगी और साथी रामा, नार घाट पर रोवे कसबिनिया रे हरी। और वे फुट फुट कर रो उठे। मल्लाह ने और तेजी से डाह चलाया, नाव ठीक सुंदर के सामने आ पड़ी, पर सुंदर अपने ही विचारों में मग्न गाती रही। जो मैं जनतयु नागर जईबा काली पनिया रामा, तोरे पसवा चली अवतयु बिनुरे गवनवा रे हरी। ऊपर वायु सिसक रही थी, नीचे गंगा की लहरें करा रही थी, और नौका पर बैठे मल्ला सहित तीनों यात्रियों की आंखें बरसाती नदी सी होड़ लगा रही थी। इसके बाद भी बहुत दिनों तक मिर्जापुर निवासी नारघाट की पगली को पैसा देकर उससे कहीं कलजी गवाते और करुणा खरीदते रहते। सुनने वालों की आंखें भर जाती जब वह कलेजे का सारा दर्द खोल कर गाती, अरे रामा नागर नया जाली काली पनिया रे हरी।